ओम शांति, ओम शांति। तीन शक्तियां अनादि और अविनाशी गाई गई है, जिनको किसी ने भी रचा नहीं है। वो कौन सी है तीन शक्तियां? एक है पुरुष, दूसरा है परम पुरुष और तीसरी है प्रकृति। पुरुष, परम पुरुष और प्रकृति, तीनों को किसी ने भी रचा नहीं है, ये अनादि अविनाशी है। लेकिन खेल दो के बीच में चलता है, तीन के बीच में नहीं। कौन से दो के बीच में खेल चलता है? पुरुष और प्रकृति, इन दो के बीच में खेल चलता है इस सृष्टि पर। जब पुरुष प्रधान है, प्रकृति अधीन है, तो ये संसार सतयुग है। लेकिन समय अंतराल पुरुष अधीन हो जाता और प्रकृति अधिकारी हो जाती है, तो ये संसार कलयुग है। फिर जब परम पुरुष आते हैं तो फिर से पुरुष को अधिकारी बनाते हैं, अर्थात आत्मा पुरुष है और प्रकृति स्त्री है, उस हिसाब से अगर हम कहें। और परमात्मा परम पुरुष है, इसीलिए उनको फादर कहते हैं। तो आज भी बाबा ने कहा पुरुष माना आत्मा, तो आत्मा को मेल कहेंगे, फीमेल नहीं। फीमेल तो शरीर है। अगर आध्यात्मिक रूप से देखें, यह शरीर प्रकृति है और प्रकृति होने के कारण ये फीमेल है, और पुरुष माना आत्मा, वो मेल है, उसका वास्तव में वो मालिक है इस प्रकृति का। आत्मा पुरुष प्रकृति का मालिक है। तो आज की मुरली है कि आत्मा मेल है, फिर भले फीमेल का चोला आत्मा धारण करती है, और व्याकरण में पुरुष आत्मा को फीमेल ही कहते हैं, लेकिन बाबा कहते नहीं, पुरुष माना बच्चा और बच्चा माना अधिकारी। तो परम पुरुष का वो अधिकारी है। तो आज बाबा ने इन तीनों को अच्छी तरह से समझाया है, जो हम सुनेंगे बाबा के माँ वाक्यों में। तो सुनते हैं, आज 20/5/2026 है। मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। कल भी बाबा ने कितना जोर दिया, देही अभिमानी कितना समय रहते हैं। अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है? वास्तव में सारा दिन देही अभिमानी स्थिति रह सकती है, क्योंकि मैं आत्मा पुरुष हूँ, मालिक हूँ इस देह की इंद्रियों का। तो मैं मालिक बन करके कर्म करूँ तब कहूँगा, तब कह सकते हैं देही अभिमानी स्थिति। तो देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है और बाप की याद में कितना रहते हैं? बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं? बाबा तो बहुत श्रीमत देते हैं, लेकिन सब बच्चे पूरी श्रीमत को फॉलो नहीं करते हैं। जो तकदीरवान बच्चे होंगे वही श्रीमद का पूरा पालन करते हैं। तो तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं वो कभी भी उस डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं जाएंगे। तो तकदीरवान बच्चे होंगे तो कौन सा है वो डायरेक्शन? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है मीठे बच्चे आत्माभिमानी भव। ये सबसे बड़ा डायरेक्शन है। अगर देह अभिमान में आते हैं तो तकदीरवान नहीं कहलाएंगे, देही अभिमानी रहते हैं तो तकदीरवान है। तो मीठे बच्चे आत्माभिमानी भव, तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं, शरीर के मालिक हो, तो आप मेल हो फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है, अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहे। मैं आत्मा पुरुष हूँ तो देही अभिमानी स्थिति रहती है, उसका वो अभिमान रखो। नहीं तो देह अभिमान में है तो उस हिसाब से समझते मैं पुरुष हूँ, हाँ मैं अधिकारी हूँ, लेकिन आत्मा रूप में पुरुष हूँ ये बुद्धि में रखो, तब देही अभिमानी रह सकेंगे। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहें, यही ऊंची मंजिल है। हर कर्म करते देही अभिमानी स्थिति, बाबा कहते ये बड़ी ऊंची मंजिल है। तो तकदीर की बात है तो कौन सा गीत होगा? तकदीर जगाकर आई हो। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी, देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी, रूहानी अभिमानी एक ही बात है। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत यही है। आधा कल्प का देह अभिमान है और उस देह अभिमान को तोड़ना, देही अभिमानी लगातार रहना सारा दिन कर्म करते, बाबा कहते इसमें मेहनत है। अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो, मैं आत्मा हूँ ये तो समझो, और आगे ऐसे समझो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना हूँ। एक्टर हूँ ना, तो एक्टर तो कितने प्रकार के रोल बजाते, हर फिल्म में अलग अलग उसका रोल होगा, एक फिल्म में ही कितने प्रकार का रोल बजाता है। तो मैं आत्मा एक्टर हूँ, तो बाबा कहते हैं कभी बैरिस्टर कभी क्या बना हूँ। आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स है, आत्मा भाई भाई। यहाँ कहीं कहते हैं आत्मा भाई भाई क्यों कहते हैं, आत्मा बहन बहन क्यों नहीं कहते हैं, लेकिन आत्मा मेल है, पुरुष है आत्मा, आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स है न कि सिस्टर्स। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल है और ये शरीर फीमेल हो गया। प्रकृति है ना, तो प्रकृति जैसे फीमेल हो गई, पुरुष आत्मा मालिक है, उसका वर्चस्व है। ये शरीर फीमेल हो गया, हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं, उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। संस्कार जैसे आत्मा में होंगे उन संस्कार मेल या फीमेल शरीर मिलता है, परंतु वैसे आत्मा मेल है। सारा मदार आत्मा पर है, ये बहुत बड़ी मेहनत है। कौन सी मेहनत? हर वक्त आत्माभिमानी होकर रहना, ये बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, अब पारलौकिक बाप को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा ये शरीर लेते हैं, अभी हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। हम आत्मा, हम शरीर लेते हैं, हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं। ये है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। तो पहली मुख्य बात, बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। हर वक्त मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ, मैं आत्मा पुरुष हूँ। तो पहली मुख्य बात, बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी हो रहना ये बहुत ऊंची मंजिल है। हर एक अपने आप से पूछे, मैं सारे दिन में कितना समय देही अभिमानी रहता हूँ, और देही अभिमानी रहने से क्या क्या हमारी एक्टिविटी होती है, और देह अभिमान में रहने से क्या एक्टिविटी होती है, ना फर्क पड़ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं, देही अभिमानी हो रहना ये बड़ी ऊंची मंजिल है। ज्ञान ऊंचा नहीं है, ज्ञान तो बहुत सरल है। बाबा कहते हैं ज्ञान ऊंच नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं है। सृष्टि चक्र को जानना, अब इसमें क्या मेहनत है? ये हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने में कोई मेहनत नहीं। ऊंच से ऊंच बाप है, फिर है सूक्ष्म वतन में देवताएं, फिर वर्ल्ड की ये हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो मनुष्य सृष्टि में होती है हिस्ट्री ज्योग्राफी, जहाँ मनुष्य आत्मा आकर कर्म करती है, ये यहाँ ही है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं होती है। जहाँ प्रकृति होगी वहाँ ज्योग्राफी होगी ना, भूगोल। लेकिन वो प्रकृति की बातें हैं भूगोल में, परंतु हिस्ट्री माना इतिहास, वहाँ मनुष्य रूप में है, कर्म करते हैं तो हिस्ट्री है। अब सूक्ष्म वतन में और मूल वतन में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात ही नहीं है। तो मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, वो है ही शांति धाम। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। यहाँ रावण राज्य में किसको भी शांति नहीं मिल सकती। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाली। तो शांति चाहिए तो पहले तो आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए, तब शांति मिलेगी। फिर मन बुद्धि से शांति धाम चली जाए तो शांति मिलेगी। फिर मन बुद्धि से बाबा को याद करे तो शांति मिलेगी, वो शांति के सागर को याद करे। तो बाकी बाबा कहते इस कलयुगी दुनिया में तो शांति है ही नहीं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाले। ये ऑर्गन्स कर्म करने के लिए है, चाहे कर्म करे चाहे न करे, और बस आत्मा देही अभिमानी हो करके बैठ जाए, अशरीरी हो जाए। चाहे कर्म करे चाहे न करे, हम तो आत्मा हैं, हमारा स्वधर्म शांति है। कर्म योगी है ना, तो इसलिए देह में तो आना पड़ता है कर्म करने के लिए, तो कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते, इस सृष्टि पर कर्म सन्यासी नहीं हो सकते, लेकिन कहाँ कर्म सन्यासी हो सकते हैं? बाबा कहते हैं परमधाम में। परमधाम में शरीर ही नहीं है तो कर्म सन्यासी है ना, शरीर हो तब कर्म हो, शरीर ही नहीं तो जैसे कर्म सन्यासी है। तो बाबा कहते हैं कर्म, हम तो आत्मा हैं, हमारा स्वधर्म शांत है, कर्म योगी है ना, कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते, ये भी इन सन्यासियों का पार्ट है, जो अपने को कर्म सन्यासी समझते हैं ये भी इनका पार्ट है। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते हैं। जो सन्यासी होते हैं वो खाना नहीं पकाते, उनके कुटिया में भी रहेंगे, वहाँ कोई चूल्हा नहीं होता है, कुछ भी आग आग उस रूप से नहीं जलाते जो खाना पकाए, वो सब गृहस्थी आकर के उनको खाना पहुंचाते हैं। तो इसलिए वो समझते हम कर्म सन्यासी है, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते तो है ना। घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते हैं, भले घर बार छोड़ा है, बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ी, नौकरी धंधा सब छोड़ा, सन्यासी बन गए, लेकिन बाबा कहते हैं कर्म तो फिर भी करते हैं ना। कर्म सन्यास तो हो नहीं सकता, कर्म सन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है, वहां पूरा कर्म सन्यास है। वहां कर्म इंद्रियां ही नहीं है तो कर्म कैसे करेंगे? इसको जहां हम है इसको तो कर्म क्षेत्र कहते हैं। कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है, कोई चाहे कि मैं कर्म क्षेत्र पर आऊं ही नहीं, सदैव परम धाम में रहूं, बाबा कहते ये हो ही नहीं सकता। फिर चाहे आओ और विनाश हो और वापस जाओ, लेकिन आना जरूर है। परंतु जो आए और विनाश हुआ और गए, बाबा उनकी भेंट किससे करते हैं? बाबा उनकी भेंट मच्छरों से करते हैं। हम रात को इतने मच्छर हो गए, फिर सवेरे देखो सब मच्छर मरे पड़े, तो आए रात को पैदा हुए सवेरे सब खत्म। तो बाबा कहते हैं कर्म क्षेत्र पर तो सबको आना पड़ता है, वो है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है, आत्माएं शांति धाम में रहने वाली है, फिर यहाँ कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आती है। अब ये है डिटेल की बातें, आत्मा पाठ बजाने आती है, कैसा पाठ बजाती, बाबा कहते ये है डिटेल की बातें। नटशेल में तो यही कहेंगे, सार रूप में यही कहेंगे कि अपने को आत्मा समझ, आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए, मूल बात तो यही है ना। इसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है, अपने आप को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो, इसी को ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। वास्तव में इनको योग भी नहीं कहना चाहिए, फिर बाबा और करेक्ट करते हैं, क्या कहना चाहिए? याद। ये सरल शब्द है, योग 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 तो क्या कहते हैं, योग लगता नहीं, योग नहीं लगता, अरे याद तो आप करते ही हो ना, तो याद कहना चाहिए। इसमें मेहनत है, योगी बहुत कम बनते हैं, योग की शिक्षा पहले चाहिए बाद में ज्ञान, है ना। पहले क्या योग सिखाते हैं हम, तो पहले वो बताना, आत्मा परमात्मा का ज्ञान देना है और कैसे उनको याद करे वो बताना है, इसलिए योग शिविर जब कराते हैं तो तीन लेसन सबसे मुख्य होते हैं, आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय और राजयोग का आधार और विधि, कैसे हम परमात्मा को याद करते हैं। ये तीन मुख्य है, बाकी तो बाबा कहते हैं सब रेज की बातें हैं, हाँ सब डिटेल है। तो बाबा कहते हैं योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान, पहले पहले है ही बाप की याद। तो बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, ये है रूहानी याद की यात्रा। देही अभिमानी बनकर बाबा को याद करना, ये है रूहानी याद की यात्रा। ज्ञान की यात्रा नहीं होती है, ज्ञान की यात्रा नहीं, रूहानी यात्रा में हम हर वक्त हम चल रहे हैं, जा रहे हैं, यात्रा पर हैं। ज्ञान की यात्रा नहीं, इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है याद की यात्रा में, क्योंकि बहुत विघ्न आते हैं ना, तो इसलिए मेहनत करनी पड़े। कोई तो भल बीके कहलाते हैं परंतु बाप को याद नहीं करते। बीके भी कहलाते हैं लेकिन बाबा को याद नहीं करते। तो बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। ये देही, ये भी देह अभिमानी था। अब ये शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं, जब तक ये आत्मा का ज्ञान नहीं था पूरा, शिव बाबा का ज्ञान नहीं था, तो ये भी तो देह अभिमानी था, ये भी देह अभिमानी थे। अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है, ये साकार ब्रह्मा बाबा के लिए कहते, उस समय तो पुरुषार्थी थे ना। तो अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। ब्रह्मा कोई भगवान तो नहीं है ना, ये तो नहीं कहेंगे कि बाबा भगवान हो गया। वो भी जब तक ब्रह्मा नहीं बना, शिव बाबा की प्रवेशता नहीं हुई, तब तक तो बाबा कहते देह अभिमानी थे, गृहस्थी थे, बाल बच्चे वाले थे। तो ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पतित हैं, पावन श्रेष्ठाचारी एक भी नहीं। आत्मा के लिए ही कहा जाता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। मनुष्य भी कहते हैं, मनुष्य आत्मा को याद तो करते हैं, और क्या कहते हैं, मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। परंतु समझते नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा कह देते, मैं आत्मा हूँ ये नहीं कहते, परंतु समझते नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो पूछा जाता है कि हे जीव की आत्मा, तुम क्या धंधा करते हो? लौकिक धंधा करते तो पहले आप पूछेंगे भाई तुम क्या धंधा करते हो, लेकिन अभी आत्मा का ज्ञान है तो अभी ये नहीं कहेंगे तुम क्या धंधा करते हो, लेकिन हे जीव की आत्मा तुम क्या धंधा करते हो? तो कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। तो पहले पहले ये निश्चय कर बाप को याद करो। ये रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनना बहुत जरूरी है, चाहे ज्ञान कितना भी हो, पर देही अभिमानी बनने का अभ्यास नहीं करते तो बाबा कहते हैं वो कुकुर ज्ञानी है ना, कुकुर ज्ञानी खाली सवेरे सवेरे बांग भरता है, सबको जगाता है, फिर सो जाता है, या पंडित बाबा उसको कहते हैं। तो बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वो पक्के देही अभिमानी बने हैं। ज्ञान में बहुत होशियार है वो, तो पंडित भी कितना अच्छा ज्ञान सुनाता, लेकिन देही अभिमानी तो नहीं है ना। तो ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वो पक्के देही अभिमानी बने हैं, लेकिन इसका ऑपोजिट है। देही अभिमानी जो है वो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं, देहाभिमान में भी ज्ञान सुनाते, वो तो बुद्धि दिमाग उनका तेज है, परंतु जो देही अभिमानी होंगे, बाबा कहते वो अच्छी रीति धारण करते हैं ज्ञान को। बाकी तो बहुत है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं, परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। हमारी दादियां थी, इतना देही अभिमानी रहती थी, ज्यादा नहीं बोलती थी, परंतु थोड़ा सा ही बोलती थी और उसका कितना प्रभाव पड़ता था, क्योंकि वो देही अभिमानी होकर बोलती थी। ताकि कोई कितना भी ज्ञान सुनाए, बाबा उसको कहते लबाड़ बोलता ही रहता है, परंतु खुद इसकी धारणा नहीं है। तो बाबा कहते हैं, बाकी तो बहुत है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं, परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें क्या बनना है? घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें क्या बनना है? बाबा ने कहा इसमें जिन बनना है। हाँ, जिन ने कहा मुझे काम दो, नहीं तो खा जाऊंगा, तो भले जिन बनो, मन को काम दो, बाबा को याद करने का काम दो, नहीं तो माया खा जाएगी। तो बाबा कहते इसमें जिन माफिक बनना है। जिन की कहानी है ना, बाप भी यह काम देते हैं, मुझे याद करो नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। माया है जिन, माया खा जाएगी, इसीलिए माया को खाने न दो, तुम जिन बन जाओ और बाबा को याद करो। माया है जिन, जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुमको बहुत कशिश होगी, तुमको बहुत कशिश होगी, बाबा की याद अच्छी रहेगी, कशिश होगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में भी लाएगी, माया तो आएगी ना, तूफान में लाएगी, पर बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बस इस खुशी में रहना है। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है। क्या क्या करती है माया, है ना, वो भी लिस्ट है। पहले तो नाक से पकड़ती है, फिर कान से पकड़ती है, फिर चोटी से पकड़ती है, फिर थप्पड़ मारती है, फिर थोशा मारती है ना, मल्ल युद्ध की तरह थोशा मारती है, फिर गिरा देती है, बेहोश बनाती है, क्या क्या करती है माया, फिर तो मार भी डालती है। तो देखो बाबा कहते ये माया, तो देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है। अब इसका अलग अलग है, नाक से पकड़ती है माना उस समय कंफ्यूजन में आ जाते, जैसे नाक किसी का पकड़ो वो सांस नहीं ले पाएगा तो मूंझ जाएगा, तो मूंझ जो आती है अंदर में, ज्ञान को पूरा समझ नहीं पाते हैं, जैसे माया ने नाक पकड़ा है, बहुत प्रश्न खाली चलते हैं। फिर कान से पकड़ती है जब पर चिंतन करते, फिर चोटी से पकड़ती है माना अपनी पुरानी बातें याद करते, क्योंकि चोटी से पकड़ा माना पीछे सिर हो गया, फिर चमाट मारती है माना सिर फिर जाता है, तो माना दूसरों को ही देखते हैं, खुद को नहीं देखते, और फिर ठोसा मारती माना वो कैसे गिरा देती है, फिर खा जाती है कहो या मार डालती है, बहुत कुछ करती है माया। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है। हातमताई का खेल दिखाते हैं, हातमताई बताते हैं कि अरेबियन कहानियां हैं, तो उसमें दिखाते हैं मेलरा डालने से गुम हो जाते हैं, वो जो भूत आता है या जो माया आती है, अगर मोहिलरा पेन लो तो तावीज दिखाते वो पेन लेता था तो वो भाग जाता था भूत, तो महिलरा डालने से गुम हो जाते हैं। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाप की याद में रहेंगे तो। माया तंग कब करती है, जब बाबा की याद भूल जाती है। अगर बाप की याद में रहेंगे तो माया तंग नहीं करेगी, इस पर ही युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देगी। तुम तंग हो सो जाएंगे, अमृत वेला उठे तो सही, परंतु बाबा की याद नहीं रह पाती और बातें आती है तो तंग होकर के भी सो जाते हैं, चलो बाबा को याद करना भी नहीं है, तो तंग हो सो जाएंगे। इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है, वो सहज है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है, हमेशा समझो अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने, ये याद रहना ही मुश्किल है, बाकी किसको समझाना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे नहीं, हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, इसका भी अभिमान, ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है ना, तो ऐसे नहीं कि हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं, पहली बात ही है याद की। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, पहले ये सबक सबको सिखाना है, ये पाठ सबको पढ़ाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। पहला लेसन ही ये देना है। भारत का प्राचीन योग कोई और सिखा न सके, भगवान के सिवाय भारत का प्राचीन राजयोग कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि मनुष्य तो देह अभिमानी है, जो सदा देही अभिमानी है वही सिखा सकता है। बाप जब आकर सिखाए तब सीख सकते हैं, मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, असंभव है कि मनुष्य को राजयोग सिखाए, क्योंकि मनुष्य इस समय सब देह अभिमानी है। सत्युग में तो है ही पावन, वहां तो प्रालब्ध भोगते हैं, वहां ज्ञान अज्ञान की तो बात ही नहीं है, ज्ञान अज्ञान की बात भी अभी यही अभी है। भक्ति मार्ग में ही बाप को पुकारते हैं कि आकर के दुख हरो सुख दो, सत्युग त्रेता में कोई गुरु गुसाई नहीं होते हैं, वहां तो सदगति पाई हुई है, गुरु करते ही है सदगति के लिए, अभी सदगति हो गई है तो फिर गुरु की क्या दरकार, वहां तो सदगति पाई हुई है। सदगति का वर्षा 21 जन्म लिए तुम पा सकते हो, 21 पीढ़ी, 21 जन्म नहीं बाबा उसको करेक्ट करते, 21 पीढ़ी, पीढ़ी क्यों कहते बाबा, बुढ़ापे तक, नहीं तो जन्म तो जन्म और मरा वो भी तो जन्म हो गया ना, लेकिन बुढ़ापे तक, क्योंकि कोई अकाले मरता नहीं, तो 21 पीढ़ी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वो जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे। तो बाबा कहते हैं ये भारत में ही गाया जाता है, 21 पीढ़ी का उद्धार कर कुमारी वो जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे, ये भारत में गाया जाता है, भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है, भगवान भारत में आकर 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं। वहां तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म नहीं, तो बाप आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, अब पवित्र होने बिगर हम वापस जा कैसे सकते, हाँ पवित्र होने बिना हम जा नहीं सकते घर, तो या तो योग बल से बनो या तो सजा बल से, पवित्र होकर ही जाना है। पवित्र होने बिगर हम वापस जा कैसे सकते, यहाँ तो सब विकारी पतित हैं, जो जो धर्म स्थापक हैं वो फिर धर्म की स्थापना करने के बाद फिर उस धर्म की पालना करने भी तो आएंगे ना, वही जन्म मरण में आएंगे धर्म की पालना करने, उनके धर्म की वृद्धि होती जाती है, वापस तो कोई भी जा नहीं सकता, कोई भी धर्म पिता की आत्मा वापस नहीं गई है, अपने धर्म की पालना करने लिए वो फिर से जन्म लेती है, वापस कोई भी जा नहीं सकता, एक भी एक्टर वापस जा नहीं सकता। सबको सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, तो क्या ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात का मतलब क्या, ये तो नहीं है ना कि सृष्टि भी अकेला ब्रह्मा ही होगा जो उसका दिन और उसकी रात, ब्रह्मा के साथ तो उनके बच्चे भी तो होंगे ना, उनका भी तो दिन रात है। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, तो क्या सृष्टि में अकेला ब्रह्मा ही होगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, तुम रात में थे अब दिन में जा रहे हो। तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्यपने में रहते हो, कितना समय पूज्यपने में रहते हो और कितना समय पुजारी बनते हो, सब समझाया है। जब तक बाप न आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन न सके, कोई बना भी न सके, कोई बन भी न सके भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं, इसलिए इसको हेल कहा जाता है, नर्क कहा जाता है। हेल और हेविन दोनों में अगर दुख हो, क्योंकि दुनिया में तो यही समझते शास्त्रों में है कि सतयुग में भी तो असुर थे, तो समझते वहां भी दुख था, तो हेल और हेविन दोनों में अगर दुख हो तो फिर उनको हेविन ही न कहा जाए। हेविन माना स्वर्ग जहाँ कोई दुख नहीं, तो फिर उनको हेविन ही न कहा जाए। जब तक पूरा समझा नहीं है तब तक क्या होगा, वो उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे, कहेंगे नहीं सतयुग में भी तो ये अकासुर बकार ये सब असुर थे, तो कृष्ण था तो कंस भी था, राम था तो रावण भी था। तो बाबा कहते जब तक पूरा समझा नहीं है तब तक वो उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। तो तुमको समझाना है भारत बहुत ऊंच था, जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। और किसकी महिमा अपरम अपार है? शिव बाबा की महिमा अपरम अपार, भारत की महिमा अपरम अपार, फिर जो ज्ञान बाबा देते गीता उसकी भी महिमा अपरम अपार, जो धर्म स्थापन करते हैं देवता धर्म उसकी भी महिमा अपरम अपार, जिस समय आते हैं संगम युग उसकी भी महिमा अपरम अपार। तो भगवान से रिलेटेड जो भी बातें हैं सबकी महिमा अपरम अपार। तो इसलिए बाबा कहते हैं जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। भारत क्या था ऐसा किसने बनाया? बाप ने। किसने बनाया? बाप ने, जिसकी महिमा गाते हैं। बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं, जिसके लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, मोक्ष मिले मुक्ति मिले बाबा कहते उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो वहाँ कौन ले जाएगा? भगवान के सिवाय तो और कोई नहीं ले जा सकता है। उसको जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं उसको अटल सुख अटल शांति अटल पवित्रता कहा जाता है। सतयुग को सदगति है तो अटल सुख अटल शांति अटल पवित्रता कहा जाता है। वहां तुम सुख में भी हो और शांति में भी हो, सतयुग में सुख भी है तो शांति भी है। बाकी आत्माएं तो शांति धाम में रहती है, सतयुग में हम आते हैं तो अटल सुख अटल शांति भी है अटल पवित्रता भी है, और परम धाम में जो आत्माएं हैं वो सिर्फ अटल शांति में है। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, क्योंकि शुरू शुरू में आते हो, सबसे ज्यादा जन्म तुम लेते हो, बाकी मिनिमम वाले जो कम से कम जन्म लेने वाले उसके लिए बाबा कहते हैं वो अटल शांति में रहते, पूरा कल्प शांति में रहते, बस थोड़ा टाइम आए इस सृष्टि पर, बाकी अटल शांति। और तुम मैक्सिमम जन्म लेते हो तो सतयुग में अटल सुख और शांति में हो। वो जैसे जो अटल शांति में रहते हैं पूरा टाइम परम धाम में है, बस थोड़ा सा टाइम आए विनाश हुआ और गई आत्मा वापस, उनके लिए बाबा कहते हैं वो जैसे मच्छरों सदृश आए, एक आधा जन्म पाठ बजाया। ये क्या, मच्छर की आयु कितनी होती है? हमने गूगल में देखा मच्छर की मैक्सिमम आयु कितनी होती है, 40 घंटा। 40 घंटा, अब 40 घंटा केवल उसकी आयु होती है। तो वो भी जो कई आए जन्मे और मरे और तो जैसे मच्छर सदृश, तो एक आधा जन्म पाठ बजाया, ये क्या, उनकी कोई वैल्यू नहीं। मच्छरों की क्या वैल्यू है, रात को जन्मते हैं, रात को ही मर जाते हैं, इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले। सुना, क्यों शांति चाहते हैं, क्योंकि गुरुओं से यही सुनते हैं बस शांति में जाना है, वापस आना ही नहीं है। तो वो भी कहते हैं बस शांति में जाना है, मोक्ष में जाना है, वापस आना ही नहीं है, क्योंकि गुरु लोग भी शांति में जाने वाले, वो भी आधा कल तो आएंगे नहीं, वो आएंगे तब जब आदि शंकराचार्य आएगा, फिर उसके बाद उस धर्म की आत्माएं आएंगी, सन्यासी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि इस समय के गुरु लोग हैं शांति में जाने वाले, तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। हाँ, हम यहाँ क्यों आए हैं, स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे, स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे। शांतिवासी कहाँ होंगे हम, वो केवल परम धाम में होंगे शांतिवासी। शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता है, वहाँ होंगे हम शांतिवासी। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं, माताएं व्रत नेम रखती है वैकुंठपुरी में जाने के लिए, है ना, माताएं व्रत रखती है पति के लिए व्रत रखती है, या श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले तो वैकुंठ के लिए जैसे व्रत रखती है। वैकुंठपुरी में जाने के लिए कोई मरता है तो भी कहते स्वर्गवासी हुआ, कोई होता नहीं है। हाँ, कोई भी स्वर्गवासी होता नहीं है, शरीर छोड़ा और स्वर्ग में गया, क्योंकि स्वर्ग है ही नहीं अभी तक अब सृष्टि पर, तो कोई होता नहीं है। लेकिन भारतवासी हेवेन को बहुत मानते हैं ना, बहुत मानते हैं, समझते हैं भारत पैराडाइज था, शिव बाबा भारत में ही आकर के स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो जरूर यहाँ ही रचेंगे। स्वर्ग की रचना भी यही होती है, वो नरक में ही होगी, तो जरूर बाबा भारत में ही आएंगे और स्वर्ग की रचना यही रचेंगे। स्वर्ग में तो नहीं जाकर रचेंगे ना, स्वर्ग में तो नहीं आएंगे रचने। कहते हैं मैं आता हूँ स्वर्ग और नरक के संगम पर, न नरक में आते हैं न स्वर्ग में आते हैं, दोनों के संगम पर आते हैं, कल्प कल्प के संगम पर आते हैं। उन्होंने इसे युगे युगे लिख दिया है, कल्प का अक्षर भूल गए हैं, कल्प के, हाँ, कल्प का जो अंत है उसके और कल्प का दूसरे कल्प का आदि, वो दो युगों के बीच में आते हैं, तो कल्प शब्द उड़ाकर युगे युगे कर दिया है। तो बाबा कहते हैं उन्होंने इसे युगे युगे लिख दिया है, कल्प का अक्षर भूल गए हैं, ये भी खेल बना हुआ है, फिर वही रिपीट होगा। इस जन्म, इस अंतिम जन्म में तुम बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो, कैसे स्थापना होती है नंबर वार, सो अब तुम जानते हो। ये सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है, खास भारतवासियों पर खेल है, बाकी आम तो सारी दुनिया का ये खेल है। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो, बाप की याद से ही राज्य पाते हो। चित्र भी खड़े है ना, राज्य पाते हो, स्वर्ग के चित्र भी खड़े है ना। ये सब चित्र किसने बनाए? इनों को कोई गुरु गोसाई तो है नहीं। अब कोई कहे कि ब्रह्मा बाबा ने बनाए, अब उनके कोई गुरु ने उनको सब सिखाया होगा जो ये चित्र बनाए, पर इनको तो कोई गुरु गोसाई है नहीं। अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़ी होता, कितने और भी शिष्य होते, वो भी ऐसे बना लेते, अनेक होते ना शिष्य। अब ये नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई जान न सके। बहुत लोग पूछते हैं, ये चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं, ये ब्रह्मा बाबा ने चित्र बनवाए हैं, तो बाबा क्या कहते हैं, ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बिल्कुल साक्षात्कार से ही बनाए है ना। आओ, उस समय जैसे जो चित्रकार ने लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया, उस समय हमारी शील इंदिरा दादी थी मुंबई में, तो वो शील इंदिरा दादी ध्यान में जाती थी। वो आर्टिस्ट उसको कहता था, कितने हार उनके होंगे श्री नारायण के, श्री लक्ष्मी के, उनका मुकुट कैसा होगा, हाँ उनके वस्त्र कैसे होंगे, तो वो ध्यान में जाकर के देख के आती थी और आकर के फिर वो आर्टिस्ट को सब बताती थी और उस अनुसार आर्टिस्ट वो चित्र बनाता था। तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो खास साक्षात्कार में जो देखा उसी अनुसार आर्टिस्ट ने बनाया, लेकिन फिर भी बाबा कहते जो सचमुच उसने देखा होगा वो तो आर्टिस्ट भी नहीं बना सकता है। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम बाप द्वारा, इनको कोई गुरु गोसाई तो है नहीं, अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़ी होता, अनेक होते, ये नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई जान न सके। तो बहुत लोग पूछते, चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं, ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है। बाबा ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया, वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया है। कैसे वहाँ माता पिता अपने बच्चे को सिंहासन देते हैं, वो भी साक्षात्कार कराया है। वहाँ कैसे स्कूल चलती है, श्री कृष्ण कैसे स्कूल में पढ़ने जाता है, वहाँ कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, सब साक्षात्कार किए। यज्ञ में हमारी दादियों ने सब साक्षात्कार किया है। बच्चे बट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे, एक तो साक्षात्कार करा करके बहलाते थे, फिर वो साक्षात्कार जो करती थी, फिर बाबा उनको कहते थे, अभी जो तुम साक्षात्कार करके आई हो ना, वो आकर के यहाँ पर वो ड्रामा करो, वहाँ वो बताओ कैसे करते थे। तो फिर उस अनुसार वो सजती थी और कैसे सिंहासन बनाते थे, तो ये सब साक्षात्कार होते थे, तो ड्रामा करते थे उसी पर। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा जैसे बच्चों को बहलाते थे, साक्षात्कार से बहलाते थे और फिर वो नीचे आकर के वो सब दिखाती थी। तो बच्चे बट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। हाँ, तो मुझे याद है, मैंने एक बार मनोहर दादी से पूछा था, बताया भी है, मनोहर दादी से पूछा कि दादी जी आपने 14 साल भट्टी में क्या क्या किया, 14 साल ना कोई कम बात है क्या, 14 साल तो क्या किया भट्टी में। तो दादी कहती, अरे शीलू क्या बताऊं, ऐसे कहती थी दादी, 14 साल तो लगे ही नहीं, वो 14 दिन लगे हमें। तो कहा 14 साल और वो 14 दिन क्यों लगे, क्योंकि बाबा ने उनको बहुत बहलाया ना, साक्षात्कार बहुत करते थे। तो बाबा कहते हैं, वहाँ स्कूल कैसे चलता है, भाषा क्या होती है, सब साक्षात्कार किए हैं। तो बच्चे बट्टी में थे तो बाप बच्चों को बहलाते थे, कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, बिल्कुल दुनिया की निगाहों से दूर थे ना। दुनिया में तो हाहाकार हो रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन बाबा के बच्चे कैसे सुरक्षित थे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे जैसे अपनी राजाई थी। बाबा के जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे 47 के बाद भी वो वही थे 3 साल, तो उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे सिंध प्रांत के, कराची भी सिंध प्रांत में, तो उनके वो मित्र थे बाबा, बाबा का नाम भी लेते अला बख्श। तो अला बख्श को उन्होंने कहा यहाँ सिक्योरिटी रखवा दो, तो ऐसी सिक्योरिटी थी जो कोई भी आतंक फैलाने वाला इस संस्था के अंदर आ भी नहीं सकता था, इतनी सिक्योरिटी बाबा ने रखवाई थी। तो उसी ने फिर अला बख्श ने 1950 में कैसे वो शिप दिया, जहाज दिया, और कहा सब सामान अपना ले जाओ, नहीं तो 47 में तो जो भी आए सब हाथ खाली आए। अब इसमें से भी कई होंगे क्योंकि सोनीपत के आए हैं, हरियाणा के आए हैं, तो वो भले दिल्ली कनेक्शन है, लेकिन जो आपके जो पूर्वज ये पाकिस्तान से आए वो हाथ उठाएं, देखो कितनों के होंगे जरूर जो पाकिस्तान से आए हैं, भाई भी होंगे ना आपके पूर्वज पाकिस्तान से आए, तो कैसे वो भाग कर आए अपनी जान बचा करके, हाथ खाली नंगे पैर, क्योंकि उनके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन इस संस्था को आंच भी ना आने दी शिव बाबा ने। और फिर कैसे वो चीफ मिनिस्टर ने एक जहाज दिया, शिप दिया, और सब सामान ले आए। तो अभी बीच में या कॉल ऑफ टाइम प्रोग्राम हुआ था फॉरेनर्स का, तो वहाँ अल्लाह बख्श का जो पोता था वो आया था उसमें, और उसने उर्दू भाषा में दादी जानकी जी का जो कंपेनियन ऑफ गॉड किताब है वो उसने उर्दू भाषा में लिखी थी और ट्रांसलेशन किया था। और जब दादी कराची गई थी तो वो कराची में वो कैसे बांटा था उर्दू भाषा में, दादी गई, जयंती बहन गई, बहुत सारे गए ऑस्ट्रेलिया से और कई गए, तो वहाँ पर ये बांटा था तो उर्दू में, तो उसका पोतरा यहाँ आया था, तो वो सब सुनाता था कि मेरे दादाजी हमको ये सब बताते थे। तो बाबा कहते हैं, तो अपन कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे जैसे अपनी राजाई थी, अपनी तात, अपनी बात दूसरा कोई समझ न सके, क्या तुम वहां करते थे, समझते थे ये खुदा प्रस्थ है, लोग समझते थे ये तो खुदा प्रस्थ है। तो बाबा ने समझाया है तुम हो नंस, अब नंस हो नन, बाबा किसको कहते हैं, नन बट वन, एक के सिवाय और किसी को याद नहीं करते, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना, वो नंस तो क्राइस्ट को ही जानती है, उनके सिवाय कोई को नहीं। तुम जानते हो वर्षा तो एक शिव बाबा से मिलता है, शिव बाबा तो है बिंदी, वो भी कोई द्वारा ही समझाएंगे ना, प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा, तो बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित शरीर में प्रवेश करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है, यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है, इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा, जिन्न बनकर याद की यात्रा करनी है, माया कितने भी विघ्न डाले लेकिन मुख में मिलरा डाल देना है, माया से तंग नहीं होना है, एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। वरदान, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। हो जाते हैं ना, एक दिन इंटरनेट नहीं है तो परेशान हो जाते हैं, आज नेट नहीं है, नेट नहीं, तो साधनों के वशीभूत हो जाते हो, तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसी है, साधनों के आधार पर साधना ऐसी है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग बनाना। अब रेत का फाउंडेशन होगा तो बिल्डिंग कब तक चलेगी? रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग, इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना न हो। साधन तो निमित्त मात्र है और साधना क्या है? साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। साधन निर्माण का आधार नहीं है, साधना निर्माण का आधार है। इसीलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। साधना ही सिद्धि को प्राप्त कराएगी। स्लोगन, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। अब व्यक्ति शारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, उसके लिए बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है, एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है वो स्मृति में रखो, हिलने न दो। देह और देह की दुनिया से न्यारे बन, मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी और निराकारी स्थितियों का अनुभव करो। बुद्धि को हिलने न दो, नहीं तो क्या होगा? बुद्धि को हिलने दिया तो क्या होगा? नहीं तो युद्ध में समय बहुत व्यर्थ जाता है। जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, वैसे अपनी एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य सिंहासन मिलेगा। एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो तब भविष्य सिंहासन मिलेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, मैं देख रही हूँ भट्टी वाले तो बहुत आए हैं, जो भी सोनीपत से भट्टी में आए हैं हाथ उठाएं। अच्छा, आप लोगों को प्रोग्राम तो मिल ही गया होगा, कल बता दिया होगा, और नीचे से भी कई भाई बहने आए हैं जो सुबह सुबह नीचे से आए हैं पांडव भवन में, वो हाथ उठाए, देखो वो भी कितने आए हैं। तो आप सबके नाश्ता दिन का भोजन की जो व्यवस्था है वो बड़े डाइनिंग हॉल में ऊपर में है। भट्टी वालों की भी व्यवस्था भोजन की वो बड़े डाइनिंग हॉल में है। अच्छा, अब बाबा का परिवार तो बहुत बड़ा है, रोज कोई न कोई का समाचार आता रहता है कि किसने शरीर छोड़ा है। तो कल भी पांडव भवन, अपना पांडव भवन में जो हमारे रवि भाई है ना, जो सारा वो योगी भवन संभालते हैं, तो रवि भाई जो योगी भवन संभालते हैं, तो रवि भाई के बड़े भाई, उनका लौकिक भाई, उनका नाम था नरेंद्र भाई। लौकिक बड़े भाई नरेंद्र भाई जो परभणी महाराष्ट्र से थे, कल रात को 11 बजे अचानक हार्ट अटैक से पुराना शरीर छोड़ा और बाबा की गोद ली। उम्र उनकी 60 वर्ष थी। नरेंद्र भाई पिछले 22 वर्षों से रेगुलर ज्ञान में चल रहे थे। उनकी एक बहन सुनंदा बहन जो महाराष्ट्र के क्या है किनवट में समर्पित सेवा केंद्र पर समर्पित रूप से संभालती है, नरेंद्र भाई का अंतिम संस्कार आज शाम को किया जाएगा। ऐसी विशेष आत्मा को हम योग द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। रवि भाई तो उनको जैसे ही समाचार मिला रात को 11 बजे शरीर छोड़ा भाई ने, तो तुरंत चले गए, तो इसलिए रवि भाई अपने लौकिक में गए हैं। चलो अभी हम सब उस आत्मा को योगदान देंगे।